اپنے آپ کو بچا سکتے. سلام پڑھیں دونوں بھائی. हमें आज की रात की बरकत से, उसकी नेमत से हमें भरपूर इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को इस रात के सदके में इंशाअल्लाह मजीद बाबरकत करे। और अपने वजू की तरफ इंशाअल्लाह पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था उसी बात को आगे बढ़ाते अब एक सवाल बड़ी शुरू होता है। याद होता है जो दोस्तों ने शुरू किया था तो पुरानी परस्पेक्टिव और क्रिएटिव सोसाइटी जो हमारे माशरे की हालत है, इस्लामी माशरे की, पाकिस्तान के माशरे की बिलखसूस और बिलमूल पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कुरान मजीद क्या रास्ता दिखाता है, क्या हल पेश करता है और आया हम उन उसूलों पर अमल पैदा हैं या उन उसूलों पर अमल पैदा नहीं। यह हद तक कुरान ने जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए हैं एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की मौजूदगी में किस तरह रहने का तरीका बताया, आया हमें मालूम भी है या मालूम नहीं है। फिर पीछे भी पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था क़यामत के दिन रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे अपनी उम्मत के बारे में कि इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान मजीद से जिस हदफ के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया था उस हदफ के लिए कुरान को नहीं पढ़ा था। हम अपनी बात को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ आयात खुद कुरान करीम के हवाले से आज करना चाहूँगा चूँकि टाइम भी कम है। इंशाअल्लाह अपने को जरा हाजिर रखकर एक रूटीन की गुफ्तगू न समझते हुए समझने और समझाने के लिए जो इस लेक्चर का असली मकसद और हदफ है और अपने रास्ते को आज की दुनिया में, आज के माहौल में, आज के माशरे में अगर सही उसूलों पर हमारी जिंदगी की रविश नहीं है तो उसूलों को जानने के लिए, उनको मुअय्यन करने के लिए, उनको कश्त करने के लिए कुरान की जुबान में हमने अपने आप को तैयार करना है, आमादा रखना है और इंशाअल्लाह इस पूरे वक्त में जो हम यहाँ पर मौजूद हैं अगर इसी अंदाज में सुनेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो तब हम अपने हदफ को और अपने मकसद को इंशाअल्लाह पा सकते हैं। सूरह सात की आयत नंबर 29 किताब उन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियत्तदब्बरु आयातिहि वलियतदक्करा कुरान मजीद के नाजिल करने का हदफ क्या था अल्लाह की निगाह में। बहुत सी आयात में बयान हुआ, यहाँ पर बयान फरमाया There is a book which we have sent down unto thee full of blessing बाबरकत, तारीफ तर्जमा किया full of blessings, बाबरकत उस चीज को कहते हैं जिस पर सवाल ना हो। जैसे कुरान में अल्लाह के बारे में फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहि मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात के जिसके हाथ में बादशाहत है हर चीज़ की, जिसके हाथ में इक्तदार है हकीकत में, बाबरकत है यानी उसको सवाल नहीं है, कभी उसका वजूद अदम में नहीं बदलेगा, कभी उसका वजूद खत्म नहीं होगा, हमेशा है। इसी तरह कुरान मजीद भी बाबरकत है, मुबारक है, सवाल नापसीर है, क़यामत तक के लिए इसके उसूल कायम। ये बाबरकत किताब किसकी नज़र की? That they may meditate on its signs, लियतदब्बर आयातिही, आयात कहते हैं साइंस को, निशानियों को, ताकि इसकी आयात में तदब्बुर करें, गौर करें, फिक्र करें, उसके पैगाम को अपने शऊर से दर करने की कोशिश करें और वलियतदक्कर उलुल अल्बाब, और ताकि इस तदब्बुर के नतीजे में वो अफराद एंड दैट दोज हु पोजेस प्योर इंटेलेक्ट मे रिसीव एडमिशन। प्योर इंटेलेक्ट उलुल अल्बाब यानी खालिस अकल के मालिक जो किसी बात को समझते वक्त, किसी बात का तजिया करते वक्त अपनी अकल के साथ किसी और चीज को शामिल नहीं होने देते, अपनी ख्वाहिश को, अपने जज्बात को, अपनी पार्टी को अपनी अकल के फैसले में शामिल नहीं करते, सिर्फ खालिस अकल से फैसला करते।
हमारी इस जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना सकता है जैसा खुदा चाहता है, जैसा
ईमान कामिल नहीं है, लिहाजा हम कुरान को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ते। क्या बना रहे इससे फॉलो करने के लिए नहीं पढ़ते, अपने दीन को अपने मजहबी तसव्वुरात को कुरान से नहीं तो जो आखिरत में नुकसान है कुरान मजीद को हिदायत के लिए न पढ़ना। चंद रिवायात है, पिछली दफ़ा पिछले लेक्चर में बता मैं शुक्रिया भी अदा करता जरूर आपके से बाज़ार ने फीडबैक दिया उस वक्त मनफी दोनों। एक बात ये की गई कि रिवायात मासूमीन का तस्करा नहीं था, क्योंकि हमारा टॉपिक मैं वजात कर दूँ, चूँकि हमारा टॉपिक पुराने पर्सपेक्टिव था इसलिए मैं रिवायात नहीं लाया, लेकिन इसी पुराने मजीद के बारे में जो मासूमीन की चंद रिवायात मैं लाया हूँ। आपको याद होगा मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं दीन को समझने के, दुनिया और आखिरत में कामयाबी, एक कुरान और एक अहले बैत। चूंकि हमारा मौजू कुरान था ज्यादा अहले बैत के परामीन को उस लेक्चर में टच नहीं किया, मैं यहाँ पे आपको आलिम अलैहिस्सलाम, अल आलिम से मुराद इमाम मूसा बिन जाफर, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की सलात पढ़ी है। जिन रिवायत को कुरान का तस्करा इमाम फरमाते हैं मन अखذ دینہ من کتاب اللہ وسنۃ نبیہ، جو اپنے دین کو اللہ کی کتاب سے لے اور اللہ کے نبی کی سنت سے صلوات و علیہ وآلہ زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے قبل اس کے کہ یہ بندہ اس نے اپنا دین کتاب و سنت سے کیا ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔
खुद बुराई को रोकती है, कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं हम लोग तो कुरान शरीफ का कुछ बातें हमारे ऊपर होता है, नमाज का इफेक्ट हमारे ऊपर पॉजिटिव होता है, हम बुराई से रुकते हैं। कुरान शरीफ के पढ़ने से उसका पॉजिटिव इफेक्ट इट सेल्फ खुद उसका हमारी जिंदगी पर होता है।
قرآن مجید نے ان کو بتایا ہے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، ان کے دل خوف خدا سے ڈر جاتے ہیں۔ جن دلوں پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی یا کم طاری ہوتی ہے، جن اس کی وجہ یہ جتنا انسان اللہ سے غافل زندگی گزار چکا ہے، جتنا اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار چکا ہے، اس کے دل میں وہ نرمی، اس کے دل میں وہ نرمی جو ہونی چاہیے تھی وہ خود اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے اس کو بچائے۔ اور آگے کیا کہا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان مومنوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، ان کے ایمان میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوگا اتنی انسان کی زندگی قرآن و سنت کے سائے میں آتی جائے گی۔ یہ خود قرآن مجید ہے، جس نے دین اللہ کی کتاب سے لیا، اللہ کے نبی کی سنت سے لیا، امام فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ اپنا دین نہیں چھوڑے۔ فَمَنْ نَفَذَ دِينَهُ مِنْ اَفْوَاهِ الرِّجَالِ، جس نے لوگوں کے منہ سے ان سنی سنائی باتوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھی، رَدَّتْهُ الرِّجَالُ، چونکہ آیا سنی سنائی پہ تھا لوگوں کی باتوں سے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے لوگوں کی باتوں ہی کی وجہ سے دین سے خارج ہو جائے جبکہ اسے پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت۔ اسی طرح امام کاظم کا ایک اور فرمان، من لم يعرف امرنا من القرآن لم يتنكب الفتن۔ دیکھیں ساری کی ساری تاکید قرآن پر کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، جس شخص نے ہمارے فرمان کو قرآن مجید سے نہ لیا، یعنی قرآن مجید کے سائے میں نہ سمجھا، لم يتنكب الفتن، وہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن کے سائے میں ہمارے فرامین کو نہ دیکھے، दुश्मनों से बच नहीं सकता, यानी फिक्री इन्हेराब से बचने की कोई गारंटी नहीं है। जिन्होंने काफी की किताब उसमें रिवायात जमा की और उस किताब को तारीफ किया जो हमारी सबसे मुतबर किताब है अल काफी, उसके मुअल्लिफ वो इस किताब की आदि के स्टार्ट से पहले उसके मुकदमे में उन्होंने ये रिवायात लाई कि दीन को समझने का तरीका क्या है। उसी में इमाम का एक कौल अदा करते हैं, पहले फरमाते हैं कि जान लो खुदा तुम्हारी हिदायत करे कि किसी एक शख्स को भी ये हक हासिल नहीं है, किसी को ये हक हासिल नहीं कि अगर दो रिवायतें जो आपस में मुख्तलिफ हो, जाहिर है रिवायात सही भी है गलत भी रिवायात मौजूद है, अगर उसके सामने दो ऐसी रिवायात आ जाए जिनमें से एक सही है एक गलत है, उसको बदलने का तरीका है। फरमाया कि किसी को भी यह हासिल नहीं है कि अपनी राय से फैसला करे, एक रिवायत उसकी ख्वाहिश के मुताबिक है, उसको कोई शॉर्टकट बता दिया जा सकता है कि मैं इस पे अमल करूंगा, कहा कि किसी को हक हासिल नहीं, तरीका क्या है इसका इल्ला अला मा अतलबहुल आलिम बिकौलिही अलैहि सलाम, सिवाय इस तरीके के कि जो इमाम काज़िम ने हमें बताया। क्या फरमाया हमारी रिवायात को उन रिवायात को अल्लाह की किताब के सामने पेश करो, फमा वाफा किताब अल्लाह जो रिवायात किताब खुदा के मुताबिक हो, फखुज़ू उन रिवायात को ले लो, फमा खालफा किताब अल्लाह फरदू और जो रिवायात किताब खुदा के खिलाफ हो उन्हें रद्द। ये कुरान की अहमियत के बारे में थी, कुछ पे बात को आगे बढ़ाना है। हम दीन की तबलीग कैसे करते हैं और कैसे हमें करनी चाहिए कुरान मजीद की निगाह में, मैं कुरान की आयात यहाँ पर कोट करता हूँ, आप भी देखिएगा पढ़िएगा और जरा खुद तजिया कीजिएगा कि हमारे स्टेज से आया दीन की तबलीग इसी अंदाज में होती है या जब हम किसी दूसरे मजहब के शख्स से बहस करते हैं किसी मौजू पर अपने मजहब के बारे में उसके मजहब के बारे में, तो आया हमारी रविश वही होती है कि जो कुरान में बयान की। आप तवज्जो फरमाएं सूरह नहल आयत नंबर 125, तबलीग का तरीका क्या है, किसी को दीन की तरफ बुलाना, आपने किसी को इस्लाम की दावत दे दी है, कोई शख्स आपकी नजरों में गुमराह है, इस्लाम से गुमराह है, दीन इस्लाम का कायल नहीं है या मतलब अहले बैत का कायल नहीं, आपने तबलीग किस अंदाज में करनी है। पिछली आयात जिन्होंने कहा था कि कुरानी उसूलों के मुताबिक कुरान को फॉलो करने वाले उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, उसको जहन में रखते हुए जरा इसको देखिए समझदारी। जब कोई मरीज एक डॉक्टर के पास आता है तो वो पहले देखता है कि इसकी बीमारी किस स्टेज पर है, इसका मसला टेबलेट हल करेगी, इसका मसला इंजेक्शन हल करेगा या इसका मसला ऑपरेशन हल करेगा, पहले तशखीस देता है, पहले देखता है, उसके बाद उसका इलाज करता है। फरमाया कि दीन की तरफ भी दावत हो, किसे कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है यहाँ पर, और फिर अल्लाह के नबी के तमाम पैरोकारों को कि अगर तुमने दीनी मामले पर किसी से बात करनी है सबसे पहले तुम्हारे जहन में क्या हो, बिल हिकमा दानाई के साथ, न कि गले पड़ जाओ एक दूसरे के, न कि लड़ाई शुरू कर दो एक दूसरे से, न ताकि गुस्से में आकर शैतान को मौका दो कि बजाय हिदायत के तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दे, बजाय करीब आने के तुम्हें एक दूसरे से लड़वा दे, जो हमारे मुआशरे में होता है। بالحكمه والموعظه الحسنه wisdom والموعظه الحسنه and good advice good advice موعظه الحسنه یعنی اچھے طریقے سے نصیحت خیر خواہی ہمدردی اپنے آپ کو اس کا ہمدرد بنا کر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہماری تبلیغ کے انداز میں کب ایسا ہوتا ہے जिसका हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है उससे हमें कितनी हमदर्दी होती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उनको अगर वो लोग हमें गुमराह समझते हैं, शिया अगर सुन्नी को गुमराह समझता है, सुन्नी अगर शिया को गुमराह समझता है, इन दोनों में एक दूसरे के बारे में हमदर्दी के जज्बात कितने होते हैं। ये आयत रसूलुल्लाह को किन के बारे में कह रही है? मौइज़त हसना मुशरिकीन के बारे में। रसूलुल्लाह के मुकाबले में कौन थे? किनको दावत दे रही थी बताइए? किनको दावत दे रही थी? मुशरिकीन। उनके बारे में कहा जा रहा है बिलहिकमत वलमौइज़त हसना, मौइज़ा फास करना, नसीहत करना, हसना बेहतरीन अंदाज में जिस कदर मुमकिन है अपना अंदाज ऐसा रखो कि वो इंसान हिदायत की तरफ आ जाए, जबकि हमारे मुआशरे में तब्दील का अंदाज इसके बरअक्स। लिहाजा नतीजा भी उसके बरअक्स। अल्लाह के रसूल ने यह अंदाज अपनाया, नतीजा भी दिया। हमने ये अंदाज नहीं अपनाया, नतीजा भी उसी के मुताबिक अपनी सोसाइटी में हम देख रहे हैं। इतना इसका तर्जुमा काफी है। और अगर कोई तुमसे बहस करने भी लगे, अगर तुम बात इस तरह करो कि बहस तक बात ना पहुंचे, लेकिन अगर बहस हो भी जाए बहस के लिए भी बेलदी या आसन बेहतरीन अंदाज अपनाओ, जो बेस्ट पॉसिबल है वो अंदाज अपनाओ। क्यों? इसलिए कि तुमने तुम्हारा हदफ उसकी शिकस्त नहीं है, तुम्हारा हदफ उसे जलील और रुसवा करना नहीं है, तुम्हारा हदफ उसकी हिदायत करना, तुम्हारा हदफ उसे जहन्नम के रास्ते से हटा कर उसे जन्नत के रास्ते की तरफ लाना है, जो अल्लाह के नबी का हदफ था। इसीलिए अल्लाह का नबी मुशरिकीन के लिए भी दर्द रखता था, तड़पता था, लेकिन हमारे दिलों के अंदर यह दर्द और यह तड़प मौजूद। उसी के नतीजे में हमने भी ये दर्द खो दिया, दूसरों ने भी ये दर्द खो दिया एक दूसरे के दर्द। सूरह इसरा आयत नंबर 53 वकुल लिबादी यकूलु लती हिय अहसन। गौर करेंगे फिर, ऐ रसूल मेरे बंदों से कह दीजिए, सेड माय सर्वेंट्स that they should only say those things that are best। यानी जब आपने किसी से बात करनी है जो बेहतरीन बात है वो करो, मेयार से गिरी हुई बात न करो, मोहब्बत की बात करो, झगड़ों की बात न करो, हिदायत की कोशिश करो, हिदायत को अपना हदफ रखो, लड़ाई झगड़े को अपना हदफ। क्यों ऐसा करो? यकूल लती हिय अहसन, मेरे बंदों से कहो कि बेहतरीन अंदाज में बात करें, बेहतरीन बात करें, अच्छी तरीन बात करें, बेस्ट बात करें। क्यों? इसलिए इन शैतान या सब बैन, इसलिए कि अगर गुस्से में आ जाओगे, अगर मुकाबले में आ जाओगे, शैतान को मौका मिलेगा तुम्हें लड़वाने का, तुम्हें झगड़ा करवाने। पर आपने देखा हो अगर दो फरीक किसी भी मामले में आपस में बात कर रहे हो, एक गुस्से में बात करे कि मैं तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करता, दूसरा भी फौरन गुस्से में आकर कहता है अगर तू नहीं मानता तो मैं भी तेरी नहीं मानता, और क्या होता है वो उस मसले का हल होते होते वो हल नहीं हो सकता। जैसा उसूल बताया कि मेरे बंदों से कहो कि अच्छी बात करें, इसलिए कि शैतान उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा डलवाता है। स्टेट टू माई सर्वेंट दैट दे दैट दे शुड ओनली से दोस थिंग्स दैट आर बेस्ट फॉर शैतान सोस डिसेंशंस अमंग देम फॉर शैतान इज टू मैन एन ओपन एनिमी। शैतान ने यह काम करवाना है। अगर अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे दूसरे के साथ तो फिर उस तरीके से बात करोगे जो शैतान चाहता है। अगर कुरान के उसूल के मुताबिक तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारा अंदाज नहीं है, तो फिर दूसरा अंदाज वो तुम्हारा अंदाज नहीं है, वो शैतान का अंदाज है। इस अंदाज में नतीजा वो निकलेगा जो अल्लाह चाहता है, और इस अंदाज को छोड़ने से नतीजा वो निकलेगा जो शैतान चाहता है। जिसको हम हर रोज पामाल करते हैं, हर दीनी बहस में मुखालिफीन के जिक्र में हम इसे पामाल करते हैं। जिस कुरान के उसूल ज्यादा हमारे मुआशरे की यह आदत है, हमारे अंदर नफरतों की आदत। डू नॉट अब्यूज दोस हुम दे कॉल अपॉन बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में इन्हें पुकारते हैं, अल्लाह का शरीक बनाते हैं, उनके बारे में भी बुरे और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते। सब करना यानी गंदे अल्फाज जिसे हम गाली कहते हैं न करो, जिनको ये लोग अल्लाह का शरीक बना रहे उनको भी गंदे अल्फाज से याद न करो। ये अपनी जहालत और दुश्मनी की वजह से अल्लाह के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। ये फॉर्मूला है, अगर आप किसी के मुकद्दसात के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे बदले में, वो तो जाहिल है, आपके मुकद्दसात की हकीकत नहीं जानता। अगर आप उनके मुकद्दसात की तौहीन करेंगे बदले में दुश्मनी में और अपनी जहालत में, वो आपके मुकद्दसात के बारे में बुरी जुबान इस्तेमाल करेंगे। हमने हर कौम के लिए उनका अमल अच्छा बना दिया। हर कौम समझती है कि हम दूसरों को गाड़ी निकाल के बड़ा काम कर रहे हैं, अपने मजहब की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हम अहले बैत को बहुत डिफेंड कर रहे हैं दूसरों को गाड़ी निकाल कर, जबकि ऐसा नहीं। कुरान में कहते हैं इन द एंड व्हेन दे रिटर्न टू देयर लॉर्ड एंड वी शैल देन टेल देम द ट्रुथ ऑफ ऑल दैट दे डिड, हम बताएंगे तुमने कुरान के खिलाफ अमल किया, तुम्हारा ये अमल मुझे बना वजह बना कि मुसलमानों में इत्तफाक और इत्तेहाद की बजाय नफरत और तफरका और जिसे हम आजकल सेक्टेरियनिज्म कहते हैं वो पैदा हो, तुम्हारे पुराने उसूलों को छोड़ने की वजह से। ये एक और उसूल है सूरह मुजरात आयत नंबर 11-11, ये भी हम रोजमर्रा जिंदगी में पामाल करते हैं, इसको भी अपने कदमों के नीचे रोम देते हैं। कुरान की इस उसूल को आपने देखा होगा, शियों ने सुनियों के खिलाफ और सुनियों ने शियों के खिलाफ घटिया किस्म के लतीफे बनाए, जोक्स बनाए। अब मैं यहां पर उसको कोट नहीं करना चाहूंगा, आप खुद अपने जहन में ला सकते हैं। सुन्नी सोसाइटी में जो मुतासिर हो गए, जिनका काम नफरतों को हवा देना है, वो शियों के बारे में घटिया किस्म के लतीफे और जोक्स बनाते हैं। इसी तरह शिया भी यही काम करते हैं, अहले सुन्नत के बारे में इसी किस्म के जोक्स बनाते हैं। जबकि कुरान मजीद ने क्या कहा, इसका अंजाम बहुत भयानक है, इसका अंजाम बहुत बुरा है, ये काम ना करना, एक दूसरे का मजाक ये ना करना। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला यस्कर क़ौमुन मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिन्हुम, ओ यू हू बिलीव लेट नॉट सम मैन अमंग यू रिडिक्यूल अदर्स, दूसरों का मजाक, तुम में से एक कौम दूसरी कौम का मजाक now lie. It may be that the latter are better than the former. हो सकता है कि जो मजाक बना रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो बेहतर हो अल्लाह के नजदीक, उसका एहतराम अल्लाह के पास ज्यादा हो, और ये जो मजाक बना रहा है ये घटिया हो अल्लाह की निगाह में। हो सकता है जैसा किसी का मजाक कम हो। वला निसाउ मिन निसाइन असा अन यकुन खैरा मिनकुन्ना। Don't let some women make fun of other women. Maybe that the latter are better than the former. इसी तरह औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर अल्लाह की नजरों में, और जो मजाक बना रही है वो घटिया अल्लाह की नजरों में। एक सलात पढ़ेंगे फिर मोहम्मद वाले को। Allah does not forbid you with regard to those who fight you not for your faith nor drive you out of your homes. Allah तुम्हें नहीं रोकता उन अफराद के बारे में कि जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं। कौन लोग हैं? वो लोग जो मक्का में मौजूद थे। मक्का में एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने बकायदा जंग किया रसूलुल्लाह से, जिन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से निकाला। लेकिन मुशरिकीन का काफिरों का एक ग्रुप ऐसा था, एक तादाद ऐसी थी कि जिन्होंने ये काम नहीं किया। थे काफिर, थे मुशरिक, लेकिन जंग नहीं की। समझिएगा इस बात को इंशाल्लाह। जंग नहीं की, मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकाला। है काफिर, है मुशरिक। क्या कहता है अल्लाह कि खुदा तुम्हें नहीं रोकता उन अफराद के बारे में कि जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की तुम्हारी फेथ के बारे में, इस्लाम के बारे में। Not drive you out of your homes from dealing kindly and justly with them. अल्लाह उन पर उनके साथ अच्छा सलूक करने से तुम्हें मना नहीं करता। उनके साथ अच्छाई से पेश आओ, उनके साथ नेकी से पेश आओ। है कौन लोग? मुसलमान नहीं। कौन लोग हैं? काफिर है, बुतपरस्त है, मुशरिक है, जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग की। जाहिर है तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना है, मुसलमान लड़ना पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हारे घर छीन लिए, तुम्हारा हाथ बंद कर, तुम्हारा राइट है अपने घर वापस, उनसे जंग करो। लेकिन जिन्होंने ये काम नहीं किए उनके साथ तुम नेकी और अच्छा सलूक करो। अल्लाह नहीं रोकता। क्यों? इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। फॉर अल्लाह Love those who are just. अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है कि जो दूसरी कौमों से भी मोहब्बत से पेश आए, दूसरी कौमों के साथ भी अच्छा सलूक करे। अब शिया और सुन्नी दोनों से सवाल किया जाए कि कितने शिया हैं कि जो अहले सुन्नत पर जुल्म करते हैं, कितने अहले सुन्नत हैं जो शियों के साथ जंग करते हैं, कितने? लेकिन हमने माहौल ऐसा बनाया, हमारे टीचिंग स्टाइल में माहौल ऐसा बनाया कि हमें पूरी की पूरी कौम से नफरत है। शिया सुन्नी से नफरत करेगा, सुन्नी शिया से नफरत करेगा। सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये शिया है बस काफी। सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये सुन्नी है, बाकी जो जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज है, नेकी है, तकवा है, परहेजगारी है, वो सब की सब पीछे हट जाएगी। सिर्फ वो फिरका सामने रह जाए। कुरान मजीद इस मिजाज के खिलाफ कहता है कि हत्ता जो काफिर है उनसे भी अगर अच्छा सलूक करो तो अल्लाह ही अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन आयात को खुद भी जाके देखें, पढ़ें, जो सवाल हो, क्योंकि ये हमारी नजर में ऐसी बातें हैं कि जो हमारे माशरे में नहीं की जाती। शायद हमसे कहा गया था, मुझे बताया गया था कि बास अहले सुन्नत यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि पास आए और पास और अफराद यहाँ पर तशरीफ लाए और खुदा तौफीक दे। ये बहस शिया सुन्नी की बहस नहीं है, ये बहस कुरानी बहस, कुरानिक डिस्कशन है, कुरानिक पर्सपेक्टिव है। और कोई शिया उस वक्त तक शिया नहीं हो सकता जब तक कुरान पर उसका ईमान ना हो, जब तक कुरान को सबसे बड़ा हादी ना समझता हो। और कोई सुन्नी उस वक्त तक सुन्नी नहीं हो सकता जब तक कुरान को अपना सबसे बड़ा हादी ना समझता हो। लेकिन अफसोस क्या है, दोनों ग्रुप्स ने इन उसूलों को तर्क किया, इनको छोड़ दिया है, लिहाजा इनके नतायज। ये किताब है हदीसों फिर दीन और तकाफा वाले इस्तेमाल सोसाइटी के बारे में कुछ हदीस आइना की जमा की इस किताब में। ये किताब वाले क्या कहते हैं, सुनते जाइएगा, मुझे जल्दी गुजरना होगा। फरमाते उस आयत के नीचे ये जिक्र करते, उस आयत को जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह काफिरों से कह रहे हैं अच्छा सुलूक करो, जो तुमसे जंग नहीं करते, जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं कहा। फरमाते हैं कि अगर दूसरे अदियान के लोगों के बारे में अल्लाह दुश्मनी से मना करता है तो खुद जो इस्लाम के अंदर भी मुख्तलिफ मकातिब है अल्लाह वहां पर दुश्मनी की कब इजाजत देता है। जो हमारे साथ हालत जंग में नहीं, जो तुम्हारे साथ हालत जंग में नहीं है, जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम पे जुल्म नहीं करते, तुम्हारे घर तुमसे नहीं छीनना चाहते, तुम पर तजावुज नहीं करना चाहते, उनके साथ दुश्मनी अल्लाह किसकी कतई इजाजत नहीं देता, खिलाफ से कुरान नहीं है। छठी बात को छोड़ते हैं, इसका खुलासा जो मैंने बात की है वो ये है कि जब दूसरे अदियान के लोगों से बात अच्छे सलूक का हुक्म है तो फिर अपने दीन के अंदर इस्लाम के अंदर और भी ज्यादा इस हुक्म की ताकत है अच्छे सलूक। और इसी तरह इससे बढ़कर अपने मजहब के अंदर आज हमारे मिजाज की वजह से शियों के भी कई टुकड़े, शियों के भी कई ग्रुप्स हैं। आप अपनी स्टेज को देख सकते हैं, शिया शिया आपस में लड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि वो जो प्रिंसिपल बताए इकट्ठा रहने के कुरान में उसके मुताबिक हमारा मिजाज नहीं है, लिहाजा शिया भी आपस में ग्रुप्स पर ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं, लड़ाइयों पर लड़ाइए, झगड़ों पर झगड़े, हर रोज इजाफा होता है, कभी नहीं आते। नए ग्रुप्स बनते हैं, ये हम सुनते हैं नया ग्रुप बन गया, एक नया मसला खड़ा हो गया, ये नहीं सुनते कि चंद ग्रुप्स में मिलकर एक यूनिटी इख्तियार की है, इकट्ठे हो गए और अब वो सब मिलकर मकतब की खिदमत करेंगे, ये खबर कम सुनने को मिलती है। वजह क्या है? वजह कुरान मजीद को छोड़ दिया। ये एक रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ उनकी मस्जिदों में। यहाँ मुराद क्या है, जो मौजू है पीछे जो मौजू चल रहा है वो है जो लोग तुम्हारे मजहब को फॉलो नहीं करते, यानी शिया नहीं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, सन उनकी मसाजिद है उनकी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करो, वाहूद मरदा हम उनके मरीजों की दीमारदारी करो, अगर वो बीमार हो उनकी बीमार उसी के लिए जाओ, वशहदु जनाजा हो अगर वो जब वो मरे उनके जनाजों में शिरकत करो, फिर उनकी नमाज जनाजे में शिरकत करो, वह इन इस्तेदाओ अगर तुम ऐसे हालात बना पाओ, अन तकून अइमा वल मुअज्जिनीन कि तुम अपने आप को इस तरह पेश करो कि तुम उनके इमाम बन जाओ, इमाम जमात बन जाओ। आजकल इसका तसव्वुर नहीं है लेकिन आइमा के जहन में इसका तसव्वुर था कि अगर तुम हमारे बताए हुए उसूलों पर चलो तो वो भी तुम्हें कबूल करेंगे जो उनमें से अच्छे अफराद, अगर कर सको उनके आइमा बन जाओ, इमाम बनो, बल मुअज्जिनीन उनकी मस्जिदों में मुअज्जिन बन जाओ, ऐसा करो, इमाम ताकीद फरमा रहे क्यों, فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग एक बात करेंगे इसके नतीजे में, और वो बात क्या होगी, हाउला अल-जाफरिया ये जाफरी हो, ये शिया हो, रहमल्लाहु जाफरन अल्लाह इमाम जाफर पर अपनी रहमतें नाज़िल करे हमारे अच्छे कामों की वजह से, दूसरे लोग क्या कहेंगे, अल्लाह इनके उस्ताद पर, अल्लाह इनके इमाम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। मा काना अहसना मा युअद्दिबु असहाबहु, कितनी अच्छी तरबियत की है इमाम जाफर ने अपने साथियों की, तुम्हारे अखलाक की वजह से, तुम्हारे अमल की वजह से लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। वकीदार करा तुम जाए, और जब तुम इस बात को तर्क कर दोगे, छोड़ दोगे, ये नहीं करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, और तो यही लोग क्या कहेंगे, आप मुलाजा चाह सकते, ये शिया होते, ये शिया करी तुम्हारी बुराई करेंगे। आप मुलाजा चाह सकते, फाजल्लाहु जाफर, अल्लाह जाफर का भला ना करे। इमाम फरमाते हैं कि जब तुम अच्छे काम छोड़ोगे तो जो मुझे नहीं जानते तुम्हारी वजह से जानते हैं, तुम मेरा नाम लेने वाले तो क्या कहेंगे, अल्लाह इनके उस्ताद का भला ना करे, ना उसमें मुझे बुरा कहेंगे। मां गाना अस्वा अमानी अद्दर अस्वाब, कितने बुरे तरीके से अपने शियों की तरबियत किए, तुम मेरे लिए बाइस इज्जत बन सकते हो, तुम मेरे लिए बाइस लोगों की बुराई का बाइस। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा कि तो रिवायत मैंने पढ़ी है, कोई ऐसा दोस्त, कोई बुजुर्ग जिसने ये रिवायत पहले पढ़ी हो या सुनी हो, एक दो तीन, लेकिन ये तादाद बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। ये रिवायात किताबों में पैक होकर हमारे घरों में पड़ी, ये आयात कुरान में पैक होकर हमारे घरों के अंदर पड़ी, एक सलात पड़ी हो भगवान, इस रिवायत को पढ़ते हुए मुझे मालूम था कि यह सवाल किया जाएगा। सवाल आया, सवाल उन्होंने किया कि अगर हम सुन्नी मस्जिद में जाकर अजान दें, क्या हम उसमें अशहदु अल्लाह इलाहा कहेंगे या नहीं, इंशाअल्लाह इसका जवाब ये कि मैं इसमें आयात इसके आगे भी बहुत सी है, लेकिन टाइम शायद 5 मिनट मजीद हो, जाकर हम पहुँच सकते हैं, इंशाअल्लाह स्पेंड कर लूँगा, अगर अगर दो भी कितने इंशाअल्लाह इसको इस टॉपिक को फिर आपने अगर चार कहेंगे। ये उसूल काफी की के अंदर एक किताब है, किताब ईमान वल कुफ्र, और उसके अंदर एक बाब है, बाब दरजात ईमान, यानी ईमान के दरजात, उसकी ये रिवायत है, सारी रिवायतें करता है। इमाम का एक इमाम है सादिक अलैहि सलाम का एक आदम है, वो इमाम से आकर कहता है कि ये लोग जो मतलब अहले बैत को मानने वाले नहीं, जो विलायत आईमान के कायल नहीं, कहता है कि मैं इनसे करीब बरात का इजहार करता हूँ, हम भी ऐसे ही करते, हम इनसे बरी बरी किन से होना होता है, दुश्मना है अहले बैत से, हम सब कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हर दूसरा दुश्मन है अहले बैत, जबकि ऐसा नहीं, अक्सरियत अहले सुन्नत मुहिब्बीन है अहले बैत, फर्क क्या है उनके इल्म में और हमारे इल्म में फर्क है, अहले बैत के बारे में उनकी मार्फत में और हमारी मार्फत में फर्क है। आइमा क्या पॉलिसी देते हैं कि कोशिश करो उनकी मार्फत को ज्यादा करो, न कि उनसे बरात करो, हाँ जो हमारे दुश्मन हैं, जो नासबी हैं, उनसे बरात करो। लिहाजा जब इसने इमाम के गुलाम ने आकर कहा कि मैं बरात का इजहार करता हूँ उनसे, इमाम ने फरमाया ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, भला ये बोलो ना मा तबूलो, लेकिन उस बात के कायल नहीं हमारे बारे में जिस बात के तुम कायल हो, शिया लोग तब रहू ना मैं हूँ या तब रहू ना मैं हूँ, तुम उनसे इजहार बरात करते हो। इसने जवाब दिया खुद तो ना जी मैं उनसे बरात करता हूँ, قال فهو صاح عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا ان نبرع منكم, तो जो हमारे पास इल्म है, इमाम ने फरमाया जो मेरे पास इल्म है, जो अहले बैत के पास इल्म है, जो अहले बैत की मारिफत है, वो तुम्हारा दर्जा तो नहीं है मारिफत का, उस गुलाम से फरमाए तुम्हारे पास तो वो इन नहीं है। उसने कहा कि ला जो है तो फिदा जी नहीं आपका इन ज्यादा है हमारा इन कम है। इमाम ने फरमाया तो फिर एक और स्टेप लिया बहुवा सा इंदल्लाह माने सा इंदना फकरा अतरहना जो अल्लाह का इल्म है वो हमसे भी ज्यादा है हमें वो जितना चाहता है अता करता है लेकिन असल कमाल इल्म खुदा की जात है हमारा इल्म अल्लाह के मुकाबले में कम है। इसने जवाब दिया जी ऐसा ही है अल्लाह का इल्म ज्यादा फरमाया कि आया तूने देखा है कि अल्लाह ने हमारे साथ बरात कर दी इल्म की कमी की वजह से या तुम्हारा इल्म कम है अहले बैत का इल्म ज्यादा है आया तुमने देखा कभी कि हमने तुमसे बरात का इजहार किया हो फतर तुम्हारे इल्म में कमी की वजह से लिहाजा तुम भी वो अफराद जो हमारी विलायत के कायल हैं लेकिन हमसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ इजहार बरात नहीं कर सकते। ये पॉलिसी गलत पॉलिसी ये रिवायत बाप दर्जात की मार इसके अंदर मौजूद है। ये आयमा की पॉलिसी है मैंने यहाँ पर लिखा है कि बट बी लेकिन हम शायद ये मुझे बात खत्म करनी पड़े हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाली बात को जहन में रखिएगा और जो हम करते हैं वो रविश कुलाने मजीद जी की आयत आयत ही की रोशनी जो लहजे इस कुरान की आयत ने बताया वही लबो लहजा हमारा एक दूसरे के बारे में होता है शिया का सुन्नी के बारे में सुन्नी का शिया के बारे में وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست The Jews say, बस आप इस आयत से Jews को हटा दें और Christians को हटा दें शिया और सुन्नी ले बाकी बात सारी की सारी हुई बाकी बात सारी की सारी हुई The Jews say, the Christians stand on nothing. इनकी कोई बुनियाद नहीं सब जाहिल सब बेअकल And the Christians say, the Jews stand on nothing. ईसाई भी कहते हैं कि Jews stand on nothing. यहूदी जाहिल हैं। यहूदियों के पास कुछ नहीं है यहूदियों की बातें बेबुनियाद हैं। जबकि वहुम यतलून किताब दोनों जबकि दोनों अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो they follow the same book. इतना ही मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा शिया और सुन्नी पहले सुन लीजिए सबसे पहली कॉमन चीज अल्लाह की किताब अहले सुन्नत भी दावा करते हैं कुरान को फॉलो करने का शिया भी दावा करते हैं कुरान को फॉलो करने का पूरा का पूरा कुरान कॉमन है दुनिया का कोई शख्स चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो अगर वो कुरान मजीद पर ईमान रखता हो कुरान मजीद को अपना हाजी और रहबर मानता हो तो कोई दूसरा शख्स उसे कहे कि तू बिल्कुल तेरी कोई बुनियाद नहीं है ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा गलत इंसान है। इसी तरह जो हमारा मेरा अपना जाती तजुर्बा है जाती तहकीक है वो क्या है कि अगर आप शिया और सुन्नी हदीसों को लेकर बैठ जाए हदीस की बुक्स को लेकर बैठ जाए बुखारी मुस्लिम और दूसरी अहदीस की कुतुब को लेकर बैठ जाए इसी तरह उसूल काफी मजारुल फकीर तहजीब इस्तिफसार इन किताबों को लेकर बैठ जाए और हदीसों को कंपेयर करना शुरू करें कॉमन अहदीस कॉमन बातों को ढूंढना शुरू करें और आज कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर ने यह काम बहुत आसान कर दिया। अगर आप ये काम करने लगे तो मैं अगर बहुत भी एहतियात से कहूँ अबव 80% हदीसें आपको कॉमन मिलेंगी अबव 80% 80% से ज्यादा दीन एक जैसा सिर्फ बास खास टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो जिनमें आप उसकी किताब है अगर तो वो भी बुनियादी बात है कोई शक नहीं लेकिन उन इख्तलाफात के बारे में जो गलत रवैया है वो कौन सा है खिलाफ कुरान खिलाफ सीरत अहले बैत न कुरान ने वो रविश बताई मैंने बताया न सीरत अहले बैत में वो रविश मिलती है कि जो आज मैंने और आपने अपनाई जो आज दूसरे मुसलमानों की फिरकों ने भी अपनाई लिहाजा अपने इस किए की अपने इस जुर्म की सजा की पार हो एक सवाल बड़ी महत्वपूर्ण है सोल्यूशन पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ था, सोल्यूशन ये कॉमन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और जो इख्तलाफी चीज़ें उनके बारे में कोई ज़ाबता अखलाक किया जाए और वो ज़ाबता अखलाक उसकी बुनियाद एवरिज्म में जैसे अपने फतवा में भी मुहैया की वो क्या है कि कोई शिया सुन्नी मुकद्दसात की तौहीन ना करे। इनकी बहस अलग बात है, आपको बातें की अच्छे माहौल में एहतराम को महफूज रखते हुए बात की अलग है, लेकिन तौहीन गाली सात बातें इससे मना किया और सीरत अहले बैत से ही ये फतवा लिया हो एक दूसरे के कुरान से ये फतवा लिया कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। अहले सुन्नत को भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, मतलब अहले बैत और उनको भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, तब जाके इस अजाब से मुसलमानों को निजात मिलेगी। जब तक ये फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे तब तक इस मुश्किल से, इस जुल्म से, इस तजावुज से, इस जहालत से, इस इग्नोरेंस से उम्मत मुस्लिमों को निजात नहीं मिल सकती।
ये पहले
पहले भी बयान हुई थी, ऐसा बयान नहीं करूँगा। ये अहले किताब के बारे में बोलूँ मैं, अहले किताब से कहूँ सिर्फ तौहीद पे अटल हूँ, तो मुसलमान को तौहीद के अलावा और कितनी ही बातें ऐसी कि जो शियों में और सुन्नियों में कॉमन है, क़यामत के दिन कोई अल्लाह को इस आयत का जवाब नहीं दे पाएगा कि तुमने क्यों आपस में यूनिटी का रास्ता इख्तियार नहीं किया, क्यों तुमने कॉमन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया, क्यों तुमने सिर्फ इख्तलाफी बातों को हाईलाइट किया। एक जो सुना दूँ जो आपने टीवी में देखा भी होगा कि एक शख्स आजकल टीवी में दिखाते हैं शायद जियो में या किसी चैनल में, एक शख्स खुदकुशी कर रहा है, दूसरा उसको बचाने के लिए आता है, कहता है खुदकुशी, उसको रोकता है, कहता है तुम मुसलमान हो, कहता तुम मुसलमान, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान, कहते हैं शिया वाले सुन्नी हूँ, कहता मैं सुन्नी हूँ, कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुन्नी हूँ, कहता देवबंदी वाले बरेलवी हूँ, कहता बरेलवी हूँ, कहता मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ, कहता है वो फलाने पता नहीं नक्शबंदी बरेलवी हूँ या पता नहीं कादरी बरेलवी हूँ, कहता मैं कादरी, कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कादरी बरेलवी हूँ। चलते चलते पाँच छः और स्टेप लेने के बाद एक माइनर सी चीज़ में वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, कहता तू काफ़र है जा खुदकुशी कर, मर वाजिबुल कतल। हम सब की हालत ये है कि सारी बड़ी कॉमन चीज़ों को छोड़कर, बुनियादी इस्लाम के प्रिंसिपल्स को छोड़कर, बहुत कम बातों पर एक दूसरे को जहन्नमी और एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, जबकि ना अहले सुन्नत की रिवायात की रोशनी में सही रिवायात की, ना ही मतलब अहले बैत की रिवायात की रोशनी में, दोनों की रोशनी में ये बात गलत है। एक दूसरे को काफिर करार देना, एक दूसरे से मदद करना, इंशाल्लाह इन आयात को, इन रिवायात को समझने की और अपनी जिंदगियों को इंशाल्लाह इन उसूलों के मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। इस बात बड़ी मेहरबानी। ये पहला सवाल था इफ वी वर टू बी एक्सेप्टेड टू गिव अजान इन सुन्नी मस्जिद शुड बी गिव अजान इंक्लूडिंग द विलायत ऑफ मौला अली और नॉट। जाहिर है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तबलीग के लिए, जब तक वो अहले सुन्नत है तब तक वहाँ पे उनकी मस्जिद में जाके विलायत करवाई देना, यानी अपने आप को वहाँ से निकालना, जबकि इस काम का हदफ इमाम ने क्या बताया, आप अपने अखलाक के जरिए उन्हें करीब लाएं। इससे इस चीज़ को हमारे मजहब में कुरान की जुबान में क्या कहते हैं, तकिया। तकिए की मुख्तलिफ अकसाम हैं, इनका भी बयान का वक्त नहीं है। उनमें से तकिए की एक किस्म यह है कि आप वो चीज़ें जिनसे भड़कने का अंदेशा है वो आर्जी तौर पर या माहौल की वजह से उनका इजहार न करें और उनके साथ भेजें। आप जाते हैं खाना काबा में, वहाँ पर मुस्तहदीन का मराज का क्या मतलब है, सजदेगा ना रखें आप, कालीन पर भी सजदा करना वहाँ पर जायज़ है। क्यों जायज़ है, तकिए की एक किस्म, इसलिए कि सजदेगा रखने से आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे, सजदेगा रखने से आपको वो नहीं हो सकता है कि आपके साथ बुरा सलूक करें, आपकी इंसल्ट करें और वो बिना वजह आपकी इंसल्ट है, वहाँ कोई हदफ नहीं है, लिहाजा कहा कि वहाँ पर सजदेगा को ना रखें, तो वहाँ पर भी तकिया किया जाए। आप अगर आप ऐसे बनेंगे एक दिन आखिर वो दिन आएगा वो आपसे कहेंगे कि जो तुम्हारा मजहब है वो ही सही, उसके बाद वो खुद से वो गवाही देंगे जो आप उसे दिलवा के चाहते। लगा कि वो दुआ करना से नए खास लोगों को दावत देने वाले लोगों अपनी जुबान के बगैर भी अपनी तकलीफ से अपने आमाल से सर टू परसेंट व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग आर्गुमेंट बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग आर्गुमेंट वो तो हो गया सभी जगत में कबीर ने मत वर्मा के साथ असर बजाते हम मिलती है हंस पहले अच्छी तरह इंसान समझे जो कुरान की आयत जान ले इंशाल्लाह उसी को उस आयत को जो मैंने सुबह किए गए आप चाहे उसकी तफसीर देखें उसमें तबलीग इस आयत को जब बोला गया तफसीर में फिर वो तरीके भी बयान किए गए कि जब आप खारे से बात कर रहे हैं उसको तबलीग कर रहे हैं तो फिर आपको किस किस चीज़ का लिहाज रखना है लेकिन प्रिंसिपल वही है कि जो आयत में बयान हुआ व्हाट कुरान पाक सेज अबाउट ब्लास्फेमी अबाउट तौहीन रिसालत के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है ये टॉपिक एक लंबा छोटा टॉपिक है रिवायात ऐसी है एक शख्स आया रसूलुल्लाह की सहाबा की मौजूदगी में तौहीन की रसूलुल्लाह ने उसको छोड़ दिया सहाबा ने कहा कि आप इजाज़त दें मैं उसकी गर्दन उड़ाए रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया लेकिन बाज़ अफराद को सजा भी लिहाजा केसेस डिफर करते हैं वो शख्स अब वो अंदाज़ा लगाना सिस्टम का काम है निज़ाम का काम है वो शख्स जिसने जानबूझकर ये काम किया हो जानबूझकर तौहीन की हो उसका हुक्म और है शरीयत में और जिस शख्स ने अपनी इग्नोरेंस की बिना पर न जानते हो गलती से अगर उसको पता होता तो ये काम न करता अगर उसने ये काम किया है तो फिर उसको उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाए लेकिन ये खुद एक डिटेल टॉपिक है दोनों तरह की रिवायात किताबों में मौजूद है जिसको अलग से डिस्कस किए जाने की जरूरत है सिर्फ यहाँ इसका जवाब क्या है कि उस शख्स ने जिस कैफियत में वो काम किया उसके मुताबिक उसके साथ डील किया जाएगा अगला सवाल ये कि बहसियत शिया हमें तो अब से कुछ देर पहले तक कुरान समझने से मना किया जाता है कि वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता लिहाजा सबसे पहले हमें तालीमी कुरान की तकलीफ की अशद ज़रूरत है खुसूसन मेंबर से तो ये तो सवाल नहीं है बल्कि तजवीज़ है मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है बल्कि ये वाजिब है मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि शहीद उस्ताद मुर्तज़ा मुतालिनी रिज़वान अल्लाह ताला अलैह के ऐसी शख्सियत थी जिसको इमाम बुखारी ने फरमाया कि मुतालिनी मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल है अगर किसी ने हुमैनी रिज़वान अल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का रिजल्ट देखना हो समर देखना हो फ्रूट देखना हो तो वो मुर्तज़ा मुतालिनी है शहीद मुर्तज़ा मुतहरी उन हस्तियों में से कि जो सदियों में एक पैदा होता है जामे उलूम यानी सिर्फ फिक्र के मायर नहीं उलूम इज्तिमाई सोशल साइंसेस के भी मायर हैं फिलोसफी के भी मायर हैं सियासत के भी मायर हैं स्पेशलाइज इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है कुरान की तफसीर में हदीस में और अगर आप उनकी कुतुब को पढ़ें तो उसका अंदाज़ा हो जाता है शहीद की शहादत को 32-33 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन आज भी शहीद की किताबें ईरान की सोसाइटी में तरोताज़ा हैं यह हस्ती कुरान मजीद के बारे में एक फतवा है और फतवा क्या है फरमाया कि कुरान मजीद को पढ़ना समझना ना कि अरबी जुबान तजवीद बल्कि कुरान मजीद को पढ़ना उसको समझने के लिए ये हर मुसलमान पर वाजिब है वैसे ही जैसे नमाज वाजिब जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है जैसे रोजा रखना वाजिब है जैसे बाकी वाजिबात है उसी तरह कुरान मजीद को समझने के लिए पढ़ना हर मुस्लिम पर वाजिब है फर्ज है अगर ना पढ़े तो गुनाहगार है क्या मतलब जवाब दे और जो अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे सूरत में कुरान को छोड़ दिया तो उम्मत से मुराद मौलाना हजरात नहीं उम्मत से मुराद सारी उम्मत जब कुरान ने कहा कि अफला यतदब्बरून कुरान ये कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते तो मुराद उलमा नहीं है मुराद ये नहीं है कि अहले बैत कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते वो तो करते थे हर